आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
नमस्कार, 8 जनवरी है आज, दिन है शुक्रवार और हाजिर हूं मैं नितिन ठाकुर लेकर इवनिंग न्यूज एंड एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। आज सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की नहीं बल्कि बीजेपी की। समझेंगे कि वसुंधरा राजे के बिन राजस्थान बीजेपी चल सकती है क्या। फिर बात करेंगे किसान और सरकार की, बैठक हुई तो आज की बातचीत से कोई निष्कर्ष निकला या नहीं। फिर आपको अमेरिका ले चलेंगे और ट्रंप की पार्स का एनालिसिस करेंगे। खबर है कि वो खुद को माफी देने पर विचार कर रहे हैं, इस पर कानून क्या कहता है चर्चा होगी। साथ ही बताएंगे क्या एयर पॉल्यूशन से प्रेगनेंसी पर कोई असर पड़ता है और आखिर में मैच के हाई पॉइंट्स पर बात करेंगे और कल टीम इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस रहेंगे उस पर भी। लेकिन पहले हेडलाइन सुनते हैं खुशबू कुमार से।
कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज नौवें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अब अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों की कैंटीनों से कार, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज जैसे सामान की खरीद आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो 25 जनवरी तक बलवंत सिंह राजवाना के मौत की सजा के खिलाफ दाखिल दया याचिका के संबंध में फैसला करे। राजवाना को 15 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी और वो 25 साल से जेल में है। असम राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम 11 और 12 जनवरी के दिन असम में रहने वाली है। असम में इसी साल मार्च से अप्रैल महीने के बीच विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिन से फरार था। बर्ड फ्लू के संकट के बीच WHO ने बयान जारी कर कहा है कि अच्छी तरह साफ कर व पका कर चिकन और अंडे खाए जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें जिस तापमान पर पकाया जाता है उससे वायरस मर जाता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत केली क्राफ्ट की ताइवान यात्रा पर चीन बिफर गया है। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर केली क्राफ्ट आने वाले दिनों में ताइवान की यात्रा करती हैं तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मकान खरीदने की इच्छा रखने वालों को भारतीय स्टेट बैंक ने अच्छी खबर दी है। बैंक ने होम लोन की दरों में 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3% की कटौती की है। अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ टेस्ला के CEO एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। एलन मस्क की नेटवर्थ $188 बिलियन से अधिक हो गई है। और सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 338 रन पर आउट करने के बाद अपनी पहली पारी में 2 विकेट खोकर 96 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद हैं।
2020 में राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी छाई रही, लेकिन अब बात करते हैं बीजेपी में चल रही अंदरूनी तनातनी की। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। कहा गया कि नड्डा ने ही इन्हें दिल्ली तलब किया था। इस मुलाकात और बैठक में क्या कुछ हुआ इसको लेकर तो कहीं कोई सुर्खी नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा ज्यादा रही कि राजस्थान की पूर्व CM और भाजपा नेता वसुंधरा राजे को इस बैठक में बुलाया क्यों नहीं गया। वैसे तो वसुंधरा और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच मनमुटाव की खबर कोई नई बात नहीं है, इसका एक लंबा सिलसिला है। ऐसे में वसुंधरा को ना बुलाने को किस तरह देखा जाए, क्या राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा का कद लगातार छोटा किया जा रहा है, कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हमने बात की जयपुर से आज तक रेडियो रिपोर्टर शरद कुमार से और उनसे पूछा कि दिल्ली में जो मुलाकात हुई उसके सियासी मायने क्या हैं, कहीं ये प्रदेश में किसी बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट तो नहीं।
देखिए, ये चौंकाने वाली बात रही क्योंकि जिस तरह से अचानक से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ को बुलाया गया है अचानक दिल्ली से, जेपी नड्डा की आवाज पर ये मीटिंग हो रही है, हर कोई चौंक गया कि अचानक से इस तरह से 3 नेताओं को क्यों बुलाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस बारे में कुछ बताया नहीं गया है, वो अपने धौलपुर में राजमहल में है, तो इसलिए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों अचानक इस तरह से जेपी नड्डा ने मीटिंग बुलाई है। हालांकि उनके तरफ से देर रात ऐसा कहा गया सतीश पूनिया की तरफ से कि 3 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, 90 निकायों के चुनाव हैं, उसके लिए इस तरह की बैठक बुलाई गई है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से निकायों को कुल के रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाए, ये कोई किसी गले नहीं उतरी, इसलिए तरह तरह कयास लगाए जा रहे हैं। पिछली बार ये मीटिंग जब इन्होंने बुलाई थी जेपी नड्डा ने, तब कांग्रेस में बगावत हुई थी, इसलिए कर भी तरह तरह की चर्चा चल रही है। वसुंधरा राजे का ना जाने को लेकर यह साफ कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजस्थान में बीजेपी की राजनीति में शायद वसुंधरा राजे के अब दिन लद गए हों, इसीलिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वसुंधरा राजे को अपनी स्कीम में राजस्थान में शामिल नहीं कर रहे हैं।
शरद, पिछले कुछ महीनों में जो एक एंटी वसुंधरा खेमा प्रदेश में तैयार हुआ है या कहूं कि मजबूत हुआ है, उसे कैसे देखा जाए और वसुंधरा गुट का इस पर कोई रिएक्शन आया है क्या?
देखिए, वसुंधरा राजे के समर्थक बांसवाड़ा में वसुंधरा समर्थक मंच नाम से एक मंच बना लिया है, उन्होंने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री हैं प्रतापगढ़ के से पूर्व एमएलए हैं नंदलाल मीणा, उन्होंने सीधे बगावत कर दी और कहा है कि वसुंधरा राजे को लाया जाए। वर्तमान जो नेतृत्व है बीजेपी का वो सक्षम नहीं है, तो एक तरह से जिस तरह से बीजेपी में पहली बार कोई मंच बनाकर सदस्यता अभियान चलाया जाए अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इससे पहले जब पहली बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी, जो चंद्रराज सिंघवी नाम के एक नेता थे, उन्होंने वसु मित्र परिषद वसुंधरा फ्रेंड्स क्लब बनाया था, जिसके लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। उसके बावजूद इस तरह से ये आधी बात सामने आई है कि इस तरह से एक मंच बना है जिसकी सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे का जो खेमा है वो मुखर होने लगा है। वसुंधरा राजे चुप बैठने वाली नहीं है, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया है मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसके बाद भी वो झुकी नहीं है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किया जाता है तो वो पलटवार करेंगी। अब वसुंधरा खेमा जो है बिल्कुल एकजुट हो रखा है, गुलाब सिंह कटारिया हो या सतीश पूनिया हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सब एकजुट हो रखे हैं और शायद बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके तरफ से इशारा हो तभी यह सब हो रहा है।
शरद, एक चीज और है, वसुंधरा का सूबे की राजनीति में जो दबदबा है, जो उनकी पैठ है, वो तो जग जाहिर है, विधायकों के ठीक ठाक नंबर से उनके पक्ष में। ऐसे में वसुंधरा को इग्नोर करके आज की डेट में राजस्थान भाजपा चल पाएगी?
देखिए, बीजेपी के बारे में आपको बता दूं मैं कि चाहे येदियुरप्पा हो, कल्याण सिंह हो, मां भारती हो, बघेला हो, बीजेपी कैडर रेस पार्टी है। बीजेपी से कोई निकल कर कोई बहुत बड़ा कद का नहीं अपने आप को स्थापित कर पाया। बलराज मधोक भी इसके उदाहरण है, जनसंघ के संस्थापक। तो ये कहना कि वसुंधरा राजे का कद बहुत बड़ा है, वसुंधरा राजे बीजेपी में कुछ कर पाएंगी, मुझे लगता नहीं है कि इतिहास में जितनी घटनाएं रही है वो वसुंधरा राजे के पक्ष में नहीं है। तो वसुंधरा राजे भी दिल्ली में तब आई थी जब भैरव सिंह शेखावत को शिफ्ट किया गया था उपराष्ट्रपति बनाकर दिल्ली में। तो इस तरह से बीजेपी नेताओं को लेकर स्थापित करती है, ऐसे में कोई नया काम नहीं हो रहा है अगर वसुंधरा राजे को हटाकर कोई नया नेता स्थापित करना चाहती है तो। और वसुंधरा राजे भले ही दो बार की मुख्यमंत्री रही हो, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है, आरएसएस जिस तरह से पृष्ठभूमि में रहकर काम करता है, उसे देखते मुझे लगता नहीं कि वसुंधरा राजे तमाम अपने समर्थन के बावजूद इतनी दमदार हैं कि वो बीजेपी को झुका सकें या बीजेपी को हरा सकें, ऐसा लगता नहीं है।
बात अब किसान आंदोलन की, जहां सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक बरकरार है। फिर से किसान संगठनों और सरकार के बीच आज विज्ञान भवन में बैठक हुई, नौवां दौर था बातचीत का। इस बैठक में क्या हुआ, कोई निष्कर्ष निकला या नहीं, या फिर फंसी हुई बातचीत और फंस गई है, मैंने बात की इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से।
देखिए, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस मीटिंग में जाने से पहले किसान नेताओं ने साफ कर दिया था कि वो किसी दरमियाने रास्ते के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि उनकी दो मांग है, एक ये तीनों बिल वापस किए जाएं और सरकार एक कानूनन गारंटी दे एमएसपी को लेकर के, और उनका कहना था कि इससे कम कुछ भी वो बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार ने बातचीत का न्योता दिया था तो आज जब बातचीत शुरू हुई, इस बैठक में सरकार की तरफ से कई बार ये प्रपोजल आया कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिन पे सरकार आपकी तरफ से प्रपोजल आए तो सरकार बदल सकती है। किसानों ने दो टूक जवाब दिया कि नहीं, हमें बिल वापस चाहिए और एमएसपी पे गारंटी चाहिए। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से भी ये पहली बार क्लियरली बोला गया कि बिल वापस नहीं हो सकते हैं और आगे की चीजें मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। सरकार ने इस दौरान में ये भी कहा कि देखिए, अगर आप चाहें तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तय हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट अगर कोर्ट इन तीन बिलों को अवैध घोषित करती है तो सरकार बिल वापस ले लेगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इनको वैध ठहराती है तो किसानों को अपनी प्रोटेस्ट को बंद करना होगा। इसको लेकर के जब बातचीत थोड़ी ज्यादा आगे गई तो किसान नेताओं की तरफ से मत ये आया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का मामला बहुत लंबा चल सकता है। तो आखिरकार में जब बैठक उठी है उससे कुछ देर पहले कृषि मंत्री ने यह कहा कि अगर आप कोर्ट में मामले को तय करने के लिए तैयार हैं एक कानूनी निष्कर्ष के लिए जो कि न्यायालय से आए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से सरकार याचिका डाल सकती है कि इस मामले पे डेली सुनवाई यानी डे टू डे हियरिंग करके इस मामले का निस्तारण जल्द किया जाए। लेकिन किसान नेताओं को इसको लेकर के अभी भी आशंकित है और वो उन्होंने इस बात पे हामी नहीं भरी है। दूसरा एक प्रपोजल और सरकार की तरफ से और आया है कि एक इन्फॉर्मल समिति का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान नेता दोनों हो और वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यानी दोनों तरफों को जो मुद्दे उनको एक्सेप्टेबल हो या सोल्यूशन हो सकते हैं उनको सजेस्ट करे। और उसमें एक ये भी बात सरकार ने कही कि जरूरी नहीं है कि कोई साइड या दोनों साइड उसको माने, अगर चाहें तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ये कंडीशन सरकार ने लगाई। अब इस मामले पे जो यूनियन है वो बाहर आए हैं और उनका कहना है कि वो इस तरह के बातचीत से तैयार नहीं है, सरकार की तरफ से ठोस प्रपोजल चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो बातचीत नहीं तोड़ रहे हैं। 15 जनवरी को अगली बातचीत मुकर्रर हुई है और उसमें बातचीत आगे बढ़ेगी।
राहुल जी, सरकार की तरफ से जो प्रपोजल की बात आप बता रहे हैं, किसानों का इस पर क्या रिएक्शन है?
देखिए, किसानों का रिएक्शन ये साफ है कि वो चाहते हैं कि सरकार अपने लेवल पे तुरंत इस मामले पे हाँ या ना कहे। कि उनकी डिमांड है अगर कि बिलों को वापस लिया, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पे एक कानूनी गारंटी दी जाए, वो इसके अलावा किसी चीज पे तैयार नहीं है। तो उन्होंने बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मामले के निस्तारण की बात को लेकर के कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हियरिंग चलेगी तो वो बहुत लंबा समय लेगी और वो किसानों के हित में नहीं होगा, इसलिए वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। दूसरा उनका कहना है कि कोई इन्फॉर्मल कमेटी अगर गठन की होती है तो उसका कोई वैधानिक वो नहीं स्वरूप नहीं होगा, उसके कारण से सरकार नहीं मानेगी डिमांड और किसान नहीं मानेंगे। उन्होंने मीटिंग में एक बात बहुत अहम कही कि आज की तारीख में किसान खासकर पंजाब हरियाणा में जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, नाराजगी जिस तरह से है, अगर ये किसान नेता किसी भी दरमियाने समझौते को लेकर के जाएंगे तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है।
यानी कुल मिलाकर मामला जस का तस बना हुआ है और ये जो लड़ाई किसानों और सरकार के बीच थी अब धीरे धीरे इसका रूप तब्दील होता जा रहा है। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित नहीं किया है। कमेटी के इस फैसले को लेकर विवाद बढ़ा है, कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है तो आम आदमी पार्टी ने इसे मौजूदा हालात के हिसाब से सही बताया है। वहीं अकाली दल ने कहा कि कमेटी का स्वतंत्र फैसला है जिसमें किसी तरह की राजनीति नहीं हुई। बयानों की फेहरिस्त के बीच पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये बयान सुनिए।
गुरु तेग बहादुर जी सब के सांझे गुरु थे और उन्होंने हिंदुओं की खातिर अपनी कुर्बानी दी और हिंद की चादर बने। हमारा धर्म जो है वो ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करता। गुरु साहब ने जो हमारे दसवें गुरु थे उन्होंने तो औरंगजेब को भी बख्श दिया था जफरनामे पर ऐसी चपेड़ लगाई। तो मेरे ख्याल में ये SCPC का छोटा पन और जो मैं SCPC नहीं कहूंगा बादल परिवार की जो बात है, जो उनका दुख है कैबिनेट से निकलने का, वो प्राइम मिनिस्टर को दिखाना चाहते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि बीबी जगीर कौर है, डायरेक्ट अकाली दल है, बादल परिवार इसके ऊपर काबिज है। ये तो उनके आगे माउथ पीस है, पहले लौंगोवाल साहब थे, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था।
अमेरिकन कांग्रेस में कल जो कुछ हुआ उसकी कई तस्वीरें और वीडियोस आपकी नजरों से होकर अब तक गुजरे ही होंगे। हिंसा और तोड़फोड़ के बाद अब ज्यादातर उंगलियां डोनाल्ड ट्रंप की ओर उठ रही हैं। कई सांसद चाहते हैं कि ट्रंप को हटाया जाए, कई लोग भड़काऊ भाषण देने के लिए ट्रंप पर लीगल एक्शन की मांग कर रहे हैं। मगर राष्ट्रपति होने के नाते ट्रंप के पास एक ऐसी ताकत है जो फ्यूचर में होने वाली किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से उन्हें बचा सकती है। और अब ट्रंप जो है उसके इस्तेमाल के लिए अपने सलाहकारों से राय ले रहे हैं। इस पावर के तहत राष्ट्रपति ट्रंप सेल्फ पार्डन यानी खुद को माफी देने पर विचार कर रहे हैं। तो क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति के पास माफी के अधिकार की ये ताकत जिसकी चर्चा हो रही है और जिस पर ट्रंप कानूनी राय ले रहे हैं, बता रही हैं इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन।
अमेरिका में एक बहुत ही यूनिक फीचर है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके पूरे सिस्टम में, वो है कि राष्ट्रपति किसी को भी पार्डन कर सकते हैं, किसी को भी माफी दे सकते हैं, चाहे वो क्राइम बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। तो उसके तहत अगर आप देखें, इस कुछ बीते हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप ने कई सारे अपने लॉयलिस्ट को प्रेसिडेंशियल पार्डन, मतलब कि राष्ट्रपति के तरफ से जो माफी होती है वो दिया है। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इन लॉयलिस्ट को फ्यूचर में जब बाइडेन आ जाएंगे और कोई भी इन्वेस्टिगेशन खुलता है तो ये लोग सब मुसीबत में आ सकते हैं या फिर अपना मुंह खोल सकते हैं जिससे ट्रंप मुसीबत में आ सकता है। तो अगर इनको माफी दे दिया जाए इस पूरे 4 साल के काल में जो भी उन्होंने किया है उस पर, तो उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन खुलता है। इसी के तहत ऐसा एक प्रोविजन है कि ट्रंप अपने आप को भी माफी दे सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से 2018 में बात की थी। उसके बारे में वो, उनका ये मानना है ये, और वो ये सोचते हैं कि वो अपने आप को भी अपने कार्यकाल में जो भी उन्होंने किया है उसमें माफी दे सकते हैं। म्यूलर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ट्रंप फंस सकते हैं, तब उन्होंने ये बात छेड़ी और कहा कि मुझे पूरा हक है कि मैं अपने आप को माफी दूं, लेकिन ऐसा मैंने कुछ गलत किया ही नहीं जिस वजह से मुझे ये पावर का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जो कैपिटल हिल में हुआ या जो कैंपेन के दौरान इनके कॉल्स पकड़े गए, इनके कॉल्स लीक हो गए, उस सब के चलते वो अपने सलाहकारों से फिर से सलाह ले रहे हैं कि क्या वो ये पावर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं।
गीता जी, कानून क्या कहता है अमेरिका का इसे लेकर? क्या कोई व्यक्ति खुद के केस में जज हो सकता है?
अगर जज ज्यूरी की बात करें तो ट्रंप का मानना है कि उनके पास एब्सोल्यूट राइट है, पूरा हक है कि वो अपने आप को माफी दे सकते हैं। 13 दिन बच गए हैं तो बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं कि जो कैपिटल हिल में इंसिडेंट हुआ है, जिसके बाद अगर आप वीडियोस देखें जिसमें भड़काऊ वीडियोस थे, भड़काऊ स्टेटमेंट थे ट्रंप के, उससे उनको काफी मुसीबतें का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से अगर आप देखें वो अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि 2018 में उन्होंने बोला था कि उनको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन कैंपेन के दौरान और अभी जो हो रहा है उसके तहत उनको लगता है कि उनको शायद जरूरत पड़े। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लीगली स्पीकिंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन पर भी बहुत डिपेंड करता है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और लॉयर्स हैं उनका ये कहना है कि उनके जो फाउंडिंग लीगल प्रिंसिपल्स हैं उसमें अगर आप जज ज्यूरी की बात करते हैं तो कोई खुद के लिए जज और ज्यूरी नहीं बन सकता है। तो जो सेल्फ पार्डन है वो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स है उसके तहत नहीं आता है और इनकंसिस्टेंट माना जा रहा है। लेकिन ये फिर एक इंटरप्रिटेशन की बात है, वो अपने सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं, ये किसी भी राष्ट्रपति ने इससे पहले कोशिश नहीं की। ये इतिहास में पहली बार होगा अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री के कि किसी राष्ट्रपति ने अपने आप को पार्डन करा है, अपने आप को माफी दी है, लेकिन ये कंप्लीटली अनइमेजिनेबल भी नहीं है। तो अभी ये सब लीगल डिपार्टमेंट के तहत डिस्कशंस चल रहे हैं, वो अपनी सलाह ले रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये हक ट्रंप को नहीं है। ट्रंप का कहना है कि उनके पास ये हक है, इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है।
हेलो डॉक्टर।
हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।
अब एक रिपोर्ट की बात करते हैं, द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल, इसकी एक स्टडी में पाया गया कि साउथ एशिया में एयर पॉल्यूशन महिलाओं में गर्भपात यानी प्रेगनेंसी लॉस का बड़ा कारण बन रहा है। अब सोचिए कि हवा की खराब क्वालिटी से प्रेग्नेंट महिलाओं पर असर पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामले नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दर्ज हुए हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 349,681 गर्भपात के मामले साउथ एशिया में दर्ज होते हैं। इसका बड़ा कारण PM2.5 कंसंट्रेशन वाली हवा है, जिसका सेवन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की केरला फेडरेशन ऑफ ऑबस्ट्रेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी के इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम वेणुगोपाल से। उनसे पूछा कि प्रेग्नेंट महिलाओं को एयर पॉल्यूशन से किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं।
देखिए, अभी कई सालों से हमको ये पता है कि ये जो एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण जो है, इसका प्रभाव जो है वो गर्भावस्था में ये महिला में भी होती है, माँ में भी होती है, और वो जो गर्भस्थ शिशु है दोनों को भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो है ये वायु प्रदूषण के कारण, तो कम वजन वाले बच्चों का जन्म देना, यानी कि ये लो बर्थ वेट, ये कम वजन वाले बच्चों का जन्म देना, ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि ये गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ग्रोथ, इसके ग्रोथ में कमी होना, यानी कि ग्रोथ सही नहीं हो पाती है, और इसके कारण ये इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन और लो बर्थ वेट के जो बच्चे हैं इनका डिलीवरी होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी जो स्टडीज हो रहे हैं उसमें ऐसे भी दिख रहा है कि अबॉर्शन, यानी कि पहले 3 महीने में ये जो गर्भ है उसमें ब्लीडिंग होना या बच्चा का बड़ा नहीं होना, और इस कारण से ये डिलीवरी को टर्मिनेट करना, ये सब करना पड़ता है। ये अभी नए स्टडीज में ज्यादा ऐसे भी दिख रहा है, इसीलिए ये अभी बहुत एक चिंता का विषय बन चुका है ये वायु प्रदूषण और ये इसका प्रभाव।
डॉक्टर साहब, ये कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिनसे प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा समस्या है?
हाँ, ये अभी जो है हमको ये पता होना चाहिए कि हम आज जिस युग में रह रहे हैं यहाँ पे हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है इसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट, जो बसेस और कार से गैस का एमिशन होता है, फिर ये जो टोबैको, ये स्मोकिंग, इसके कारण टोबैको से जो आता है, फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज से धुआं जो निकलता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे ही घर में अभी हम देखते हैं तो हमारे घर में भी कार का जो एग्जॉस्ट है उसमें से धुआं निकलता है, फिर ये वाटर हीटर्स जो है उसमें से निकलता है, तो कई ऐसी जगहों से जो एमिशन, ये सब एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण को कंट्रीब्यूट करती है। इसमें से गैसेस जो निकलते हैं उसमें से कार्बन मोनोक्साइड है, ओजोन है, ये हाइड्रोकार्बन है, मीथेन गैस है, सब मिलके इनका, सबके मिला जुला हुआ इफेक्ट रहता है, कोई एक ऐसा गैस नहीं है या कोई एक ऐसा कारण नहीं है, सबका मिला हुआ इफेक्ट इसके ऊपर सबसे ज्यादा बनता है।
अच्छा, एयर पॉल्यूशन का फर्टिलिटी पर क्या असर है?
नहीं, ये डेफिनेटली ऐसे भी देखा गया है कि दोनों हस्बैंड पे और वाइफ पे, यानी पुरुष पे भी और महिला पे भी इसका इफेक्ट दिखता है। ये पुरुष में जो है, जो बीज का उत्पादन है या प्रोडक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन है, उसमें भी कमी दिखता है, और लेडीज में जो है वो अंड का, यानी कि ओविलेशन या ये उसमें भी कमी दिखता है। तो दोनों पुरुष और महिला दोनों को भी ये इसमें इसका असर पड़ता है ये वायु प्रदूषण का। इसी कारण फर्टिलिटी रेट्स, जो पोल्यूशन वाले एरियाज हैं वहाँ फर्टिलिटी रेट्स कम दिखते हैं।
और अब आखिर में बात क्रिकेट की। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच चल रहा है। आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 53 गेंदों में 9 और अजिंक्य रहाणे 40 गेंदों में 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 338 रन बनाए। इस लिहाज से मेजबान टीम को अब भी 242 रनों की बढ़त हासिल है। तो क्या खास रहा आज के खेल में? कल टीम इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस होंगे? इन्हीं सब मसलों पर आज तक रेडियो के हमारे साथी हैं कुमार केशव, उन्होंने बात की स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से। तो सुनते हैं उनकी बातचीत।
सिडनी टेस्ट का पहला सेशन बारिश की भेंट चढ़ने के बाद 5 सेशन का खेल हो चुका है, और दूसरे दिन के खेल पर चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल। स्वागत है आपका।
धन्यवाद कुमार केशव।
तो इकबाल, किसके नाम रहा आज का दिन? किस टीम का परफॉर्मेंस जो रहा वो बेहतर रहा?
नहीं, डेफिनेटली आज भारतीय टीम के नाम ये दिन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन ऑस्ट्रेलिया जिस पोजीशन पे था वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया एक बड़े स्कोर की तरफ चला जाएगा, बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया को रोकना, क्योंकि स्टीवन स्मिथ और लाबुशेन दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे जब पहला दिन स्टंप्स हुआ था, लेकिन दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। बेशक स्टीवन स्मिथ और लाबुशेन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद के बल्लेबाजों का जिस तरीके से सफाया किया भारतीय गेंदबाजों ने, वाकई काबिले तारीफ है। और फिर इसके बाद अभी करंट सिनेरियो जो है उस पर भी मैं कहूंगा कि भारतीय टीम को एक ठीक ठाक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है इस मैच में।
स्टीव स्मिथ से शुरू करते हैं। स्मिथ ने साल के पहले ही टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया है और उनका ये जो शतक है वो 8 टेस्ट मैच और 490 दिन बाद आया है। और एक बात और जो है गौर करने वाली वो ये है कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला शतक लगा है। कैसे देखते हैं आप, क्या रिकॉर्ड बनाए हैं स्मिथ ने?
नहीं, स्मिथ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया था पहले 2 टेस्ट मैचेस में, ऐसा उनके ऊपर दबाव भी बन रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े खिलाड़ी हैं वो, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े खिलाड़ी को इतनी देर तक नाकामयाब रहना, बहुत सारी परेशानियां खुद के लिए भी खड़ी होती हैं और बाहर जो फैंस हैं वो भी काफी परेशान हो जाते हैं। तो डेफिनेटली स्टीवन स्मिथ की एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है और उसका उसकी झलक उन्होंने पहले दिन दिखा दी थी कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में जो हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ आपको एक अलग स्टीवन स्मिथ दिखाई देगा और वैसा ही हुआ। बहुत परेशान किया उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को। और जिस रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं वो सर डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे तेज 27 टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों को उन्होंने पीछे छोड़ते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो डेफिनेटली काफी बेहतर बल्लेबाजी आज रही है उनकी। और जिस तरीके से स्टीवन स्मिथ के ऊपर बैन लगा था, जाहिर सी बात है कि वो जो वक्फा आपने बताया है वो तो खैर जाना ही था, लेकिन आने के बाद भी, बैन के बाद से लौटने के बाद भी उनका जो फॉर्म है उस तरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि स्टीवन स्मिथ अपने पुराने लय में वापस आ गए हैं।
आपने कल भी कहा था कि स्टीव स्मिथ इस बार पुराने लय में लौटते दिख रहे हैं। वो स्मिथ को आउट करने वाले रविंद्र जडेजा पढ़ाते हैं, क्या शानदार थ्रो उन्होंने किया था और स्मिथ रन आउट हो गए अंतिम विकेट के तौर पे। और इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया बड़ी बढ़त की ओर बढ़ता दिख रहा था तो रविंद्र जडेजा ने एक के बाद एक 4 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पिछले मैच में हमने बल्लेबाज जडेजा का जौहर देखा था और इस बार जडेजा ने बतौर गेंदबाज भी अपनी उपयोगिता साबित की है। तो क्या आने वाले दिनों में और जो ऑलराउंडर होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे या अश्विन को भी कड़ी टक्कर मिलने वाली है?
देखिए, रविंद्र जडेजा बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं और जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ समय में अपनी बैटिंग के ऊपर और बॉलिंग के ऊपर दोनों को ऊपर उठाया है, वाकई ये भारत के लिए एक असेट हैं। ये एक जबरदस्त बैलेंस लेकर के आते हैं टीम के अंदर रविंद्र जडेजा। और आज के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वाकई जिस तरीके से आर अश्विन को सफलता नहीं मिल रही थी, आर अश्विन को जिस तरह से मानो कि एकदम निगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, वहां जडेजा ने अपनी उपयोगिता साबित की और खासतौर पर लाबुशेन का विकेट, वहां से एक द्वार खोला उन्होंने। और न सिर्फ लाबुशेन का विकेट लेने के बाद एक द्वार खुली, इसके बाद अन्य गेंदबाजों ने भी जो है उनको मौका मिला और उन्होंने भी विकेट हासिल किए। तो रविंद्र जडेजा का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बहुत ऊपर है और आज अगर ऑस्ट्रेलिया 500 या 450 स्कोर नहीं कर सका तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि रविंद्र जडेजा जिम्मेदार हैं। जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी और वो स्टीवन स्मिथ, खैर वो आखिरी विकेट के तौर पर आउट हुए लेकिन फिर भी अगर वो रुक जाते तो कुछ और रन ऐड हो सकते थे। तो जडेजा का ये दिन पूरी तरह से रहा है भारतीय गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो।
चलते चलते आखिर में क्या लगता है इस टेस्ट मैच का रुख किस ओर जा रहा है और कल का खेल जब शुरू होगा तो भारत के बल्लेबाज क्या ध्यान में रखकर, किस टारगेट को ध्यान में रखकर उतरेंगे?
देखिए, अभी से कुछ प्रिडिक्ट करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, हालांकि भारत को एक अच्छी शुरुआत मिल गई है। इस पूरी सीरीज में हम अच्छी शुरुआत के लिए तरसते रहते थे, 10 तक भारत का स्कोर जा नहीं पाता था कि विकेट जो है गिरा हुआ नजर आता था। और आज भी जब मैं मैच फॉलो कर रहा था तो मैं भी देख रहा था कि 10 रन बन गए, अच्छा विकेट नहीं गिरा, इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये हम लोग देखने के लिए तरस गए थे इस सीरीज में। तो 70 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए जबरदस्त हुई, हालांकि दूसरा विकेट जल्दी गिर गया, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक स्टैंड भारत ने कर लिया है, एक अच्छी शुरुआत भारत को मिल गई है। यहां से अब मध्यक्रम के बल्लेबाजों की जिम्मेदारी आती है। चेतेश्वर पुजारा, कप्तान रहाणे खेल रहे हैं, उधर हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, जडेजा, तो बैटिंग काफी डेप्थ है और बैटिंग के लिए पिच अभी भी ठीक नजर आ रही है, अच्छी बल्लेबाजी की जा सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नेथन लायन को जो है थोड़ा संभल कर खेलने की आवश्यकता है, इसके बाद रन जरूर बनेंगे और भारतीय टीम इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी करके कुछ रनों की लीड भी ले सकता है पहली पारी में।
ठीक है इकबाल, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अच्छी बल्लेबाजी करेगी और एक बड़ी बढ़त लेने में कामयाब हो और यहीं पे इसी मैदान पर, सिडनी के मैदान पर टेस्ट जीत करके श्रृंखला अपने नाम करे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद कुमार केशव।
तो आज के दिन भर में बस इतना ही। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। हमें JioSaavn, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast पर भी आप सुन सकते हैं। इस शो की साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने और इसके प्रोड्यूसर हैं प्रतीक वाघमारे। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। हैप्पी वीकेंड।